ओम शांति। बाबा ने हम सभी को आते ही अनेक बातों की स्मृति दिलाई, जैसे गीता के चौथे अध्याय में है कि हे अर्जुन, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूं। बाबा ने आकर हम सभी को याद दिलाया, तुम आत्माएं अपने जन्मों को नहीं जानती, मैं तुम्हारे सभी जन्मों को जानता हूं कि तुमने किस किस जन्म में कितना बड़ा बड़ा ऊंचा महान पार्ट बजाया। बाबा ने और भी कुछ हमें याद दिलाया कि हे आत्माएं, तुम अपनी शक्तियों को नहीं जानती, मैं तुम्हारी शक्तियों को जानता हूं कि तुम कितने शक्तिशाली हो। तुम तो अपने को निर्बल समझते हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम्हारे पास अनंत शक्तियां हैं। बाबा ने हमें यह भी याद दिलाया कि तुम अपने को बिल्कुल साधारण समझते हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम कितने महान हो। तो बाबा आकर अपने सभी बच्चों को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, स्वमान की दृष्टि से देखते हैं। बाबा साकार में भी कहा करते थे कि तुम बच्चे अपने को उतनी ऊंची नजर से नहीं देखते जितना मैं तुम्हें ऊंची नजर से देखता हूं, क्योंकि वो हमें अच्छी तरह जानता है, हम अपने को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बाबा ने हमें जो कुछ याद दिलाया है, कहा है कि तुम ये हो, तुम ये हो, तुम ये हो, हमें उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि वो जानता है, हम नहीं जानते। बस इसी एक बात में थोड़ा सा अंतर पड़ता है कि आत्मा उन चीजों को स्वीकार नहीं कर पाती जो बाबा हमें याद दिलाता है, और हमें अपने को इस तरह तैयार करना है कि जो कुछ बाबा याद दिलाए, क्योंकि वो हमें जानता है, ये बात हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि वो हमें पूरी तरह जानता है, हम स्वयं को पूरी तरह नहीं जानते। तो जो कुछ वो हमें याद दिलाए उसे हमें स्वीकार करना चाहिए। होता यह है कि हमारा विवेक अनेक बातों को रिजेक्ट कर देता है, स्वीकार नहीं करता, ग्रहण नहीं करता। बाबा जब कहता है कि तुम सभी महान आत्माएं हो, तो हम उसको सुन तो लेते हैं, परंतु हम इस स्वरूप में नहीं आ पाते, हमारा अंतर विवेक इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता कि हम महान हैं, क्योंकि हम अपनी साधारणता को देखते हैं। बाबा हमारी महानताओं को देखते हैं और हम अपनी साधारणता को देखते हैं। तो आज हम स्वमान और स्मृति स्वरूप पर चर्चा कर रहे हैं। बाबा के शब्दों में, स्वमान में स्थित होना ही संपूर्ण अवस्था है, स्वमान में स्थित होना ही आत्मभिमानी स्थिति की बहुत ऊंची स्थिति है। स्वमान हमारे संकल्पों को एकाग्र कर देता है। स्वमान वास्तव में आत्मा की अनेक कमजोरियों को भरने का साधन है, जैसे उदासी, सेंसिटिविटी, नाजुकपन, फीलिंग आना, इसको सेंसिटिविटी कहते हैं, चिड़चिड़ापन, भय, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावनाएं, इन सब को स्वमान भर देता है, खत्म करके इनके स्थान पर शक्तियां भर देता है। इतना ही नहीं, एक बहुत सूक्ष्म बात भी हमें जाननी चाहिए कि हम में से अनेकों के ब्रेन में, मन में, बुद्धि में कई तरह के ब्लॉकेजेज हैं। ब्लॉक माना रुकावटें हैं, कई, जैसे कई चीजों के लिए द्वार बंद हैं बुद्धि के, स्वमान उनको खोल देता है। तो स्वमान एक बहुत बड़ी प्रैक्टिस है। हम ऐसा कहेंगे कि जिनका योग न लगता हो, अगर वो स्वमान का अभ्यास करें तो उनको योग का आनंद हो जाए। आप सभी को मालूम होगा, पिछले साल स्वमान का अभ्यास कराया था, दो चीजों का, तीन संकल्पों का अभ्यास बहुत ज्यादा कराया था। उसमें से एक दिन एक अभ्यास आप सबको दिया गया था कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इसका एक दिन में 108 बार अभ्यास करना है, याद है? आप में से कईयों ने उसको अभ्यास किया था 3 दिन तक 108 बार, और मुझे कईयों ने अनुभव बताया था अपना कि उनके जीवन में वो 3 दिन सबसे सुंदर थे। कुछ लोगों ने ऐसा भी किया था उससे पहले, जब एक अभ्यास दिया था कि मैं एक महान आत्मा हूं, और मैंने ये कहा था कि जिनको ये बात महसूस नहीं होती, जिनका अंतर विवेक इस चीज को स्वीकार नहीं करता कि मैं महान आत्मा हूं, तो वो अनेक बार इस एक संकल्प को अपने अंदर रिपीट करे, चाहे मंत्र की तरह रिपीट करे कि मैं एक महान आत्मा हूं। तो मेरे पास 2-3 भाई आए, उन्होंने कहा, श्याम को ये बात बताई थी 6 बजे, और उन्होंने कहा कि हमने 6 से और श्याम तक ही 8-8:30 बजे तक 100 बार इसका अभ्यास कर लिया, और ये 2-2.5 घंटे का समय हमारे जीवन की यादगार बन गया है। तो क्यों ऐसा होता है? क्योंकि स्वमान की स्थिति से हमारे व्यर्थ संकल्प पूरी तरह समाप्त होके मन स्थिर हो जाता है। स्थिर चित्त होने पर अवस्था आनंदित हो जाती है और हमें बहुत ज्यादा सुख का अनुभव होने लगता है। तो स्वमान किसे कहते हैं? स्वमान अर्थात मैं कौन हूं, मेरे अंदर कितनी महानताएं हैं, मेरे अंदर कितनी शक्तियां हैं, और मेरे कौन कौन से महान कर्तव्य हैं। इन सब को जानना और इनके स्वरूप में रहना स्वमान की स्थिति कहलाता है। स्वमान, स्वयं को स्वयं ही मान देना। हम दूसरों से मान की इच्छा रखते हैं, परंतु हम किसी से क्या मान की इच्छा रखें? भगवान ने स्वयं हमें मान दिया है। बाबा कहते हैं, तुम मेरे लाडले बच्चे मेरी नजरों में हो। भगवान ने हमें अपने सिर पर बैठाया, कंधों पर बैठाया है, हथेली पर नचाया है हमें। तो जिन्हें भगवान मान दे रहा हो, उन्हें भला और किसी के मान की क्या आवश्यकता है? इस स्वमान का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। हम जरा बाबा के महावाक्यों को याद करें, जितना हमें इसके महत्व का ज्ञान रहेगा, उतना ही हम केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक, इच्छापूर्वक इसका अभ्यास कर सकेंगे। कई लोग, हम में से कई भाई बहने स्वमान को ज्यादा महत्व नहीं देते। वो सोचते हैं हमें तो बाबा को याद करना है, विकर्म तो बाबा की याद से ही नष्ट होंगे। परंतु स्वमान एक बहुत बड़ा आधार है हमारे योग का। इस विषय को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपके सामने योग के 4 आधार हैं इसकी थोड़ी सी व्याख्या रख दूं। पहला आधार तो वही जो हमने अपने चित्रों में दिखाया है, पवित्रता। जितनी पवित्रता उतना अच्छा योग। पवित्रता के संबंध में हमें विशेष रूप से एक बात अपने ध्यान में रखनी है कि अगर हमारा ध्यान, हमारी दृष्टि बार बार देह की ओर जाएगी, देह की सुंदरता की ओर जाएगी, तो हमारा बुद्धि योग टूटता रहेगा, हमारी बुद्धि स्थिर नहीं हो पाएगी, मन विचलित रहेगा जिसका हमें पता भी नहीं चलेगा। इसलिए हमें अपनी प्योरिटी पर विशेष ध्यान देना है योग का अच्छा रस लेने के लिए। दूसरा इसका पिलर है स्वमान। जितने हम स्वमान में स्थित होंगे, हमारा योग सहज हो जाएगा। तीसरा इसका पिलर है ज्ञान का बल, श्रेष्ठ विचार, स्वचिंतन, और चौथा आत्मिक दृष्टि। जिसको अपने योग को शक्तिशाली बनाना है, 8 घंटे तक पहुंचाना है, या निरंतर ऐसी स्मृति स्वरूप स्थिति की ओर चलना है, उसको इन 4 बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पवित्रता, स्वमान, ज्ञान का बल और आत्मिक दृष्टि। तो बाबा ने हम सभी को आते ही स्वमान पर अटेंशन खिंचवाया है कि तुम बहुत महान हो, अपने को पहचानो। ज्ञान की शुरुआत भी इसी से हुई, मैं कौन हूं, और अंत भी इसी से हो जाएगा जब हम ये जान लेंगे कि मैं कौन सी आत्मा हूं। आते ही हमने ये जाना था कि मैं आत्मा हूं, और अंत तक हम ये जान लेंगे मैं कौन सी आत्मा हूं, मेरा क्या क्या पार्ट है, मेरी क्या क्या महानताएं हैं, मैं शिव बाबा के कितना समीप हूं, मैं मुझे क्या क्या महान कर्तव्य करने हैं। तो स्वमान से क्या क्या लाभ होंगे बताएंगे आप? स्वमान से पहला लाभ, जो एक बहुत बड़ी चीज है इस संसार के हर मनुष्य के अंदर, स्वमान से अभिमान नष्ट होगा। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि ये सोचना कि मैं एक महान आत्मा हूं, ये तो अभिमान हो गया, परंतु ये अभिमान नहीं, अभिमान को नष्ट करने की विधि है, ये स्वमान है। अभिमान उसे कहा जाता है, एक तो देह से संबंधित हो कि हम वो हैं नहीं और मान रहे हैं, बुद्धि हमारे पास थोड़ी हो और हम अपने को बहुत बुद्धिमान माने, धन थोड़ा सा हो और धन का नशा बहुत ज्यादा रहे, तो हम हैं नहीं और मानते हैं, वो अभिमान हो गया। तो इस अभिमान से हम सबको मुक्त होना है, अपने जीवन को, अपनी बुद्धि को दिव्य बनाने के लिए, और उसका सबसे सुंदर तरीका है स्वमान में स्थित होना। जितना जितना स्वमान बढ़ेगा अभिमान घटेगा, स्वतः ही ये काम होगा। एक बात और इस अभिमान के बारे में हमें ध्यान रखनी चाहिए कि हम इस बात को अच्छी तरह से जान लें, अपनी बुद्धि को स्वीकार करा दें कि हमारे पास जो कुछ भी है, गुण, शक्तियां, धन, बल, अथॉरिटी, अधिकार, वो सब ईश्वरीय देन। इसलिए ईश्वरीय देन में हमें अभिमान नहीं आ सकता। ये संकल्प हमारे विचारों को बहुत निर्मल कर देता है, हमारी बुद्धि में दिव्यता भर देता है। तो एक सबसे बड़ी चीज स्वमान अभिमान को नष्ट करता है। इससे और एक सुंदर बात कि जो आत्मा स्वमान में स्थित होगी, उसके सामने जो भी व्यक्ति आएगा उसका भी अभिमान नष्ट होने लगेगा। कभी कभी हम अपनी बातों के द्वारा दूसरे का अहंकार बढ़ा देते हैं, दूसरे के अहम को ठेस पहुंचा देते हैं, और अगर हम स्वमान में स्थित होंगे तो हमारे सामने आते दूसरे का अभिमान नष्ट होने लगेगा। इस स्वमान के बारे में तीसरी बहुत अच्छी बात, जो मनुष्य जीवन की अनेक समस्याओं का हल है, कौन सी वो? टेंशन फ्री। और एक और चीज कि जो आत्मा स्वमान में स्थित है, सम्मान उसके पीछे पीछे परछाई की तरह आएगा। है मान सम्मान के लिए कितनी मारामारी है दुनिया में, टेंशन है, अनेक समस्याएं हैं इसके कारण, लेकिन जो स्वमान में स्थित है उसको मान सम्मान की इच्छा की आवश्यकता नहीं, मान सम्मान तो परछाई की तरह उसके पीछे आएगा। और सुंदर शब्द है बाबा के, जो आत्माएं स्वमान में स्थित हैं उनको प्रकृति भी सम्मान देगी। जो आत्माएं स्वमान में स्थित हैं उन्हें सम्मान देने के लिए सारे संसार के लोगों की भीड़ इसी तरह लगेगी जैसे मंदिर के द्वार के आगे भक्तों की भीड़ लगती है कि द्वार खुले और दर्शन करें। तो ये बहुत बहुत बड़े लाभ होंगे। स्वमान टेंशन को भी समाप्त कर देगा, हीन भावनाओं को भी समाप्त करेगा। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमें ध्यान रखनी चाहिए स्वमान के बारे में, बाबा के महावाक्य हैं ये भी, कि जो आत्माएं स्वमान में स्थित होंगी, जब तुम स्वमान में स्थित होंगे तो तुम्हारे वाइब्रेशंस जहां जहां तक फैलेंगे वहां तक सभी आत्माएं सुरक्षित हो जाएंगी। तो तुम्हारा स्वमान तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए सुरक्षा कवच है। बहुत काम की बात है, आगे चलकर हम सबको प्रयोग करना पड़ेगा इसका। हम कैसे भी डेंजरस स्थान में चले जाएं, जहां भय का माहौल हो, लेकिन अगर हम स्वमान में स्थित होंगे तो हमारा स्वमान हमारे लिए और हमारे आसपास जितने भी लोग होंगे उन सब के लिए सुरक्षा कवच का काम करेगा। तो ये सब फायदे हैं स्वमान की स्थिति के। बाबा ने हम सभी को स्वमान की अनेक बातें सुनाई हैं। अभ्यास में हमें ऐसा करना चाहिए, किस तरह हम इसका अभ्यास करें उसकी थोड़ी सी चर्चा हम कर लें। हमें इस तरह इसका अभ्यास करना चाहिए, पहले तो हरेक अपने पास कम से कम 30-31 स्वमान की बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट्स नोट करें जो स्वयं को प्रिय लगती हो। आपने प्रश्न पूछा कि उनमें से कई बातें हमको बहुत प्रिय लगती हैं, हमें आकर्षित करती हैं, हमारे मन को भाती हैं। उसका एक साइकोलॉजिकल कारण है, हमें वही चीज प्रिय लग रही है जिसका कल पहले हम स्वरूप बने थे। जो हमारी है वो हमें प्रिय लग रही है। एक सिंपल सी साइकोलॉजी है, हर व्यक्ति को अपनी चीज ही प्रिय लगती है। अगर हमें ये संकल्प बहुत प्रिय लग रहा है, आनंदित कर रहा है कि मैं विजय रतन हूं, तो ये निश्चित है कि हम विजयी हैं। अगर हमें ये संकल्प बहुत प्रिय लग रहा है कि मैं परम पवित्र आत्मा हूं, तो निश्चित है कि पवित्रता हमारा श्रृंगार है। अगर हमें ये प्रिय लग रहा है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं, तो ये सत्य है कि हम इस सृष्टि चक्र की शक्तिशाली आत्माएं हैं। तो जो हमें प्रिय लगे, अब 30-31 लिखकर हम अपनी प्रिय पॉइंट्स पर टिक मार्क करें कि हमें उनमें से कौन सी प्रिय हैं, 5-6, और उन पर विशेष अभ्यास करें। बाकी सबको जनरल रूप से हम प्रैक्टिस करें, लेकिन जो हमें बहुत भा रही हैं, प्रिय लग रही हैं, उन पर हम विशेष अटेंशन देकर अभ्यास करें। और अभ्यास करने का तरीका कि हम एक पॉइंट ले लें रोज सवेरे, जैसे आज हमने दूसरी क्लास में भी चर्चा की कि सवेरे ही स्मृति का तिलक लगा दें, उस पॉइंट को अपने चिंतन में ले आए, और दिन में बहुत अच्छे अनुभव के लिए कम से कम घंटे में एक बार उस स्वमान की बात को अपनी फीलिंग्स में लाएं। यहां हम कुछ शब्दों का प्रयोग करेंगे, पहले उस स्वमान की बात का हम चिंतन करें, फिर उसको अपनी फीलिंग में लाएं, फिर उसके नशे में स्थित हो जाएं। 3 स्टेप्स हम लेंगे। चिंतन आवश्यक है, मैं एक महान आत्मा हूं, इस पर आप चिंतन करें या इस पर चिंतन लिखें, लिखना और भी अच्छा होगा। मैं महान हूं किस तरह चिंतन करेंगे, हम एक उदाहरण ले लेते हैं कि मैं इस संसार की एक महान आत्मा हूं। किसने कहा है मुझे कि तुम महान हो? स्वयं भगवान ने कहा, जो सबसे महान है, कि तुम महान हो। तो हम महान हैं, हम स्वीकार कर लेते हैं। आज से मैं आत्मा स्वीकार करती हूं कि भगवान ने स्वयं कहा मुझे कि तुम महान हो, तो मैं एक महान आत्मा हूं। मैं महान हूं तो मैं वैसी नहीं हूं जैसे संसार के और मनुष्य हैं, मैं उनसे अलग हूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हूं, अलौकिक हूं, इसलिए मुझे वैसा नहीं सोचना है जैसा मनुष्य सोचते हैं, मुझे वो नहीं बोलना है जो मनुष्य बोलते हैं, मुझे वैसा नहीं करना है जो मनुष्य करते हैं, मुझे वैसा कर्म नहीं करना है, मुझे वैसा व्यवहार नहीं करना है जो आम मनुष्य कर रहे हैं। भले ही वो मुझसे व्यवहार गलत करें, लेकिन मैं तो महान हूं। अपने चिंतन को और आगे बढ़ाएं, मैं महान हूं तो मेरे संकल्प कैसे होने चाहिए, मेरे बोल कैसे होने चाहिए, मुझे कैसे उठना है, कैसे सोना है, कैसे भोजन करना है, कर्म किस तरह करना है, एक विजन अपने सामने तैयार करें कि हमारे सामने एक महान व्यक्ति खड़ा हो तो हम उसे किस दृष्टि से देखेंगे, हम उसमें क्या देखना चाहेंगे। अगर वो ज्यादा बोलता हो तो हम सोचेंगे ना कि ये तो महान नहीं लगता, तो हम एक विजन बनाएं कि महान व्यक्ति को संसार कैसा देखना चाहेगा, और मैं महान हूं, भगवान की नजरों में हूं, तो मुझे संसार कैसा देखना चाहेगा। इस तरह स्वमान पर चिंतन करें। अगर हर घंटे भूल जाता है तो 5 बार या 3 बार तो स्वमान को अपने अभ्यास में अवश्य लाएंगे। मैं परम पवित्र आत्मा हूं, इस पर अपना चिंतन करें। और चिंतन करके अगर आप ऑफिस वर्कर हैं तो जब आप ऑफिस में जाते हैं वहां बैठते ही 1 मिनट स्वयं को इस स्वरूप में स्थित कर दो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं। एक छोटा सा अनुभव एक भाई का मैं आपको सुनाऊं। उसने मेरे से पूछा कि इंजीनियर वो तो वहां एक हॉल था बड़ा सा, उसमें अनेक इंजीनियर बैठ के काम करते थे एक साथ 15, सबके आगे एक एक बोर्ड होता है, सब अपना मैप्स आदि ये बनाते रहते हैं कंप्यूटर। तो कहा कि वो सारे दिन गंदी बातें करते रहते, इम्प्योर, मुझे बहुत बोरियत होती है, सोचता हूं नौकरी छोड़ दूं, कभी सोचता हूं इन्हें डांट दूं, कभी कुछ कभी कुछ, तो क्या करूं। तो मैंने उसे ये विधि बताई कि ऑफिस में जाकर 3 बार ये अभ्यास करो, मैं परम पवित्र आत्मा हूं और मुझसे चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं, 1 मिनट जाते ही करो, बीच में 1 बार करो और अंत में 1 बार, और जो भी सामने बैठे हैं उनको 1 बार आत्मिक दृष्टि से देखकर ये स्मृति लाओ अपने अंदर कि ये सब पवित्र आत्माएं हैं, भूली हैं, भटकी हैं, इसलिए रहा भटक गई हैं, वास्तव में ये सब पवित्र आत्माएं। कुछ ही दिनों में उसके अनुभव बदल गए। अब जब वो ऑफिस में जाता था सभी लोग चुप हो जाते थे, कोई कहता था भाई देवता आ गए अब ये बात बंद करो, कोई कहता था भगत जी आ गए अब ये बात न करो, तो सारा माहौल बदल गया। तो हमें ये याद रखना चाहिए इस स्वमान के बारे में, स्मृति के बारे में एक बहुत अच्छी बात कि हमारे स्वमान के अनुसार हमारे वाइब्रेशंस फैलते हैं। आप अपने अपने घरों में अभ्यास कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं कि भिन्न भिन्न तरह के स्वमान से भिन्न भिन्न तरह की समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। आप देख लें प्रैक्टिकल में, आप कुछ स्वमान चुन लें, जैसे मैं इष्ट देव हूं, इष्ट देवी हूं, मेरे दर्शन मात्र से ही भक्तों के विघ्न नष्ट हो जाते हैं, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूं, मैं साक्षात्कार मूर्त हूं, जगत का आधार मूर्त हूं, जहान का नूर हूं, भगवान ने मुझे चुना है, उसके गले की माला हूं, उसकी भुजाएं हूं, मस्तक की मणि हूं, भगवान का श्रृंगार हूं मैं। जैसे लौकिक में कहा जाता है ना, बच्चे घर का श्रृंगार होते हैं, बच्चे माँ बाप का श्रृंगार होते हैं, तो मैं आत्मा भगवान का श्रृंगार हूं। ऐसे स्वमान में स्वयं को स्थित करें तो अनुभव होगा कि श्रेष्ठ स्वमान से श्रेष्ठ विचार हो गए। विचार महान हो जाते हैं जब स्वमान श्रेष्ठ होता है। तो इस तरह योग का आधार बना लें स्वमान को, अपने संकल्पों को एकाग्र करने के लिए खेचातान न करें। एक बहुत अच्छी टेक्निक हम सबको सीखनी है, बहुत अच्छी विधि कि हम श्रेष्ठ संकल्पों की रचना करना सीखें, क्रिएट करें। जब हम संकल्प क्रिएट करेंगे तो व्यर्थ संकल्पों का फोर्स स्वतः ही नष्ट होता जाएगा। ये एक बहुत सुंदर चीज है, जो क्रिएट नहीं करते वो व्यर्थ के अधीन होते चले जाते हैं। और स्वमान की स्थिति से हमें संकल्पों को क्रिएट करने में मदद मिलती है। इस स्वमान से एक फायदा और है, मुझे एक और बात याद आ गई बहुत गहरी, कि बहुत बार योग अभ्यास करते करते कई आत्माओं को कुछ समय के बाद खालीपन महसूस होने लगता है, ब्लैंकनेस, नील स्थिति, के ब्रेन काम नहीं कर रहा, अब कोई चिंतन नहीं चल रहा, अब कोई अनुभव नहीं हो रहा, चुप बैठे हैं। अगर कोई पूछे कोई चिंतन है, कोई स्वरूप है, तो कुछ नहीं। ये स्थिति अनेकों की आती है, नील स्थिति, डेड स्थिति, जिससे न विकर्म विनाश होते, न आनंदित स्थिति होती, न शक्तियां बढ़ती है। ये स्थिति समाप्त हो जाती है जब हम योग के साथ स्वमान को लेकर चलते हैं। इसलिए बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि में इस बात को समा लें कि स्वमान और योग को बिल्कुल साथ साथ चलाएं। हम तीन स्थितियों के रूप में इस बात को देख लें। पहली स्थिति है ईश्वरीय नशा। जब हम बाबा के पास आते हैं तो हमें नशा चढ़ जाता है, आते कौन मिल गया, पाना था सो पा लिया, भगवान सामने है, स्वयं हमको पढ़ाने आ रहा है, जन्म जन्म की हमारी प्यास मिट गई है, जिसे भक्त लोग जंगलों में और कंदराओं में ढूंढ रहे हैं वो हमारे सामने उपस्थित है। ये सब देखकर हमें नशा चढ़ जाता है, हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है, संकल्पों की धारा बदल जाती है। जब हम और आगे बढ़ते हैं तो ये नशा बदलने लगता है स्वमान में। जिन्होंने लंबा समय ईश्वरीय नशे का अभ्यास किया है, उनका नशा स्वमान में बदल जाता है। बहुत लोग शिकायत करते हैं कि जब हम ज्ञान में आए तो बहुत नशा था, धीरे धीरे पता नहीं हमारा नशा कहां चला गया। ये अनेकों के अनुभव हैं। नशा कहां चला गया, इसके और कारण तो हैं, पर एक मुख्य कारण ये कि नशे को स्वमान में नहीं बदला। क्योंकि रोज रोज किसी को ये नशा नहीं रह सकता कि हमें भगवान मिल गया। अब भगवान मिले 10 साल हो गए हों तो नेचुरल हो जाएगा ना भगवान का मिलन। तो 10 साल तक ये नशा चढ़ता रहे कि हमने भगवान को पा लिया, ये असंभव है। इसलिए नशे को स्वमान में बदलना है। भगवान को पा लिया तो हम हो गए महान। अब मैं एक महान आत्मा हूं क्योंकि भगवान को पा लिया, ये हो गया स्वमान। नशे से ऊंची स्थिति, भगवान मुझे पढ़ाने आ रहा है तो मैं एक रॉयल स्टूडेंट हूं, होनहार प्रिंस, ये हो गया स्वमान। भगवान मेरा गाइड बनकर आया है तो मेरा भटकना, बुद्धि का भटकना बंद हो गया, ये हो गई बहुत डीप फीलिंग, इसको कहते हैं स्वमान। तो इस तरह हम ईश्वरीय नशे को स्वमान में बदलें। और जब हम लंबा समय स्वमान का अभ्यास करते हैं तो यही स्वमान धीरे धीरे स्मृति स्वरूप स्थिति में बदल जाता है। एक हमें स्वमान रहता है, मैं विश्व कल्याणकारी हूं, और फिर यही स्वमान स्मृति में बदल जाता है कि हे आत्मा, तुमने इस धरती पर जन्म लिया है विश्व का कल्याण करने के लिए, तुम तो पूर्वज हो, तुम्हें तो अपने वाइब्रेशन से सारे संसार की पालना करनी है। हमें स्मृति आ जाती है, तुम तो लॉ मेकर हो, तुम्हारे कर्म जन्म जन्म के लिए विधान बन रहे हैं, कानून बन रहे हैं, स्मृति आ गई। तो धीरे धीरे आत्मा एक बहुत ऊंची स्थिति में, जिसको स्मृति स्वरूप स्थिति कहते हैं, स्थित होती जाती है, और यही स्थिति हमारी संपूर्णता को समीप ले आती है। आप में से जिसने गीता पढ़ी हो उसने सुना होगा 18वें अध्याय में बिल्कुल अंत में, जब गीता ज्ञान समाप्ति की ओर है तो अर्जुन उत्तर देता है कि हे भगवान, अब मुझे स्मृति आ गई है, इसलिए मेरा मोह नष्ट हो गया है और मेरे सभी संशय मिट गए हैं, अब मैं युद्ध अवश्य करूंगा। बहुत सुंदर शब्द है, 3 शब्दों में गीता की समाप्ति और गीता का सार। आपने मुझे स्मृति दिलाई। अब ध्यान दें, गीता में भगवान ने अर्जुन को क्या स्मृति दिलाई पहले पहले, तुम सब आत्माएं हो, आत्मा न मरती न मारती, न कटती न जलती न भीगती न नष्ट होती, इसलिए कौन किसको मार रहा है। पहली स्मृति। दूसरी स्मृति दिलाई कि कहां तुम्हारे चाचा मामा भीष्म पिता में है, सब आत्माएं हैं, कोई किसी का माँ बाप चाचा मामा नहीं है, दिलाई ना स्मृति। स्मृति दिलाई कि मैं महाकाल बनकर आया हूं, मैं अपना स्वरूप दिखाया, विराट स्वरूप, और अर्जुन ने देखा कि काल के मुंह में सारी की सारी सेनाएं प्रवेश कर रही हैं। तो स्मृति दिलाई कि हे अर्जुन, मैं महाकाल बनकर आया हूं, मैंने इन सबको पहले से ही मार दिया है, नष्ट हो ही जाएंगे। स्मृति आ गई कि विनाश का समय है, ग्यारहवें अध्याय में सब है। स्मृति दिलाई बार बार, मैं तुम्हारे साथ हूं, और जहां मैं हूं वहीं विजय है। तो ये स्मृति आई तो अर्जुन लास्ट में बोलता है, मुझे स्मृति आ गई कि इन सब का संहार होना है, आप महाकाल बनकर संहार करने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, आत्मा कभी मरती ही नहीं है, हमें तो केवल निमित्त बनना है ये कार्य करने के लिए। तो सारे संदेह नष्ट हो गए, संदेह थे कि हमारी जीत होगी या नहीं, पता नहीं क्या परिणाम होगा इस युद्ध का, पता नहीं हम पे पाप तो नहीं लग जाएगा, हम अपने मित्र संबंधियों को मार रहे हैं युद्ध में। तो स्मृति दिलाई और जो मोह ममत्व था उन सब के लिए वो नष्ट हो गया। तो बाबा ने भी हमें बहुत सारी स्मृतियां दिलाई हैं। ऐसी ही ये संसार कहां उलझा हुआ है आजकल, गृहस्थ के चक्कर में, मेरा, ये मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे मां बाप, पति पत्नी, मेरी धन संपत्ति, मेरे धंधे, मेरी फैक्ट्री, इस मेरेपन के चक्रव्यूह में सारा संसार उलझा हुआ है। और बाबा ने हमें आके याद दिलाया, क्या याद दिलाया, कि ये सब तुम्हारा कहां है, ये तो प्रकृति से तुम्हें प्राप्त हुआ है और अब तुम्हें घर चलना है। सबसे बड़ी स्मृति दिलाई कि ये खेल पूरा हो रहा है, तुम्हारी यात्रा पूरी हो गई है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ गया हूं, चलना है, है? बाबा की कई मुरलियां हैं, हमने सुनी है सबने, कि बच्चे चलना है या यहीं रहना है। तो हमें स्मृति दिलाई कि तुम्हें चलना है, तो वैराग आ गया। जैसी स्मृति वैसी स्थिति, जैसी स्मृति वैसी समर्थी, जैसी स्मृति वैसे संकल्प, ये तीन चीजें हैं, स्मृति स्थिति शक्ति और संकल्प, तीनों को प्रभावित करती है। तो हम देखें कि जो जो बाबा ने हमें याद दिलाया है वो हमें याद आ गया है। ये सब आत्माएं हैं, तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे पति, ये सब नहीं है, सब आत्माएं हैं, अपनी दृष्टि को बदलो। स्मृति दिला दी है हमें, तुम सभी आदि काल में देवी देवता थे। आज भी सारी मुरली में स्मृति थी ना, कैसे तुमने चक्र लगाया है, पूरा स्मृति में आ गया, तुम हीरो पाठधारी रहे हो, तुमने बड़े बड़े काम किए हैं इस सृष्टि चक्र में, ये सब उसने हमें याद दिलाया। तुम बहुत शक्तिशाली हो, तुमने कल्प कल्प इस माया पर विजय प्राप्त की है, ऐसा समय आ रहा है जब ये माया रावण रहेगी ही नहीं। किसने खत्म किया इसको, तुमने खत्म किया है, ये याद दिलाया है उसने हमें आकर। तो तुम पावन देवी देवता थे, हमें ये याद आ गया और हम सब ने प्योरिटी स्वीकार कर ली। हम अपने को देखें, हमने प्योरिटी क्यों तत्काल स्वीकार कर ली है? लोग कहते हैं तुम्हारे साथ इस आश्रम में सभी यंग लोग रहते हैं, कैसे प्योरिटी अपना ली सबने, अपनाई है या नहीं अपनाई, ऐसे झूठ मूठ बोल रहे हो। एक व्यक्ति आया, वो ये सोच कर आया था, वे ब्रह्मा कुमारियों के सत्संग में चलता हूं, सब बूढ़े बूढ़े बैठे होंगे सत्संग में, माना रिटायर लोग जाते हैं, ये माताएं आती हैं बूढ़ी बूढ़ी रिटायर्ड लोग जिन्हें कोई काम नहीं, उन्हें काम मिलता है सत्संग में जाने का, ऐसा लोग सोचते हैं। यहां आया ज्ञान सरोवर में देखा एक भी तो बूढ़ा नहीं दिख रहा, सब 20 से 30 साल की आयु के अंदर। पूछता रहा कि भाई क्या है यहां, सारे यंग लोग इकट्ठे तुमने कैसे कर लिए, कैसे इन्होंने प्योरिटी अपना ली है। तो अपना इसलिए ली कि शिव बाबा ने याद दिला दिया कि तुम संपूर्ण पवित्र देवी देवता थे, ये सब मंदिरों में यादगार तुम्हारी ही हैं। उसने याद दिला दिया कि जिनकी भी पूजा भारत में या संसार में मंदिरों में हो रही है वो सब कौन हैं, वो तुम सब हो। अब यहां साधारण रूप में बैठे हो, गणेश भी तुम, हनुमान भी तुम में से, सारी देवियां भी यहीं बैठी हैं। तो कितना सुंदर हमारा परिवार है जिसमें सारे मंदिरों के देवी देवता एक स्थान पे आके एक परिवार में इकट्ठे हो गए हैं फिर से। तो ये बाबा ने हम सबको स्मृति दिलाई है। बहुत नशे की बात बाबा कहा करते थे कभी, बहुत पहले की मुरली है, कि तुम अपने भाग्य को देखो कि एक ओर अपनी पूजा पाठ देख रहे हो, दूसरी ओर यहां सामने बैठकर तपस्या कर रहे हो। दोनों स्वरूप तुम्हारे सामने हैं, मंदिर में जाके सुन लो भगत तुम्हारी क्या महिमा गा रहे हैं। अपने को देख लो कि भगत कह रहे हैं हे देव हे देवी तुम ऐसे हो दयालु हो कृपालु हो शक्तिशाली हो बड़े रहम दिल हो, और तुम कैसे हो, तुम्हारी तो महिमा कर रहे हैं, ऐसा नहीं तुम कठोर हो। तो याद दिलाया है बाबा ने आकर हमें सब कुछ, जो कुछ याद दिलाया हम उसे याद करें। एक लिस्ट बना सकते हैं आप अपने पास, बाबा ने हमें क्या क्या स्मृति दिलाई है, उनका हमें स्वरूप बनना है। बार बार याद करेंगे तो उनका स्वरूप हम अवश्य बन जाएंगे, और जैसे जैसे उनका स्वरूप बनेंगे वैसे वैसे ही हमारे सभी संकल्प समाप्त होते जाएंगे, योग बिल्कुल सहज होता जाएगा और हम अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। कुछ बहुत अच्छी स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं, जिसमें से एक हमने अभी रिपीट की कि अर्जुन ने जब ये जान लिया कि जहां भगवान साथ है वहीं विजय है। बहुत अच्छी यही स्मृति बाबा ने हमें भी दिलाई है कि जहां मैं हूं वहां विजय है, जहां मैं हूं वहां माया नहीं, जहां मैं हूं वहां भय नहीं, जहां मैं हूं वहां आपदाएं नहीं। तो हम अपनी विजय में विश्वास बढ़ाएं, बहुत बहुत आवश्यक है कि हमें ये स्मृति आती रहे, ये स्मृति इस नशे में बदल जाए कि विजय हमारी होनी ही है। और जब मनुष्य को ये स्मृति रहती है कि विजय हमारी होगी, है युद्ध हो रहा हो कहीं, दो पहलवानों की कुश्ती हो रही हो, दूसरा कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन एक को ज्योतिषी ने बता दिया हो कि कुछ भी हो जाए तुम्हारी जीत निश्चित है, इसमें ज्योतिष कह रहा है, तुम्हारा हाथ बता रहा है कि जीत तुम्हारी होगी, तो क्या होगा उसके लिए, लड़ाई करना खेल हो जाएगा, कुश्ती होगी खेल की तरह, कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि विजय तो मेरी ही है, ये उसको अलबेला नहीं बनाएगा संकल्प, लेकिन उसके आत्मविश्वास को इतना विकसित करेगा कि वो अपनी जीत के लिए ऐसा संकल्प रखते हुए खेल की तरह कुश्ती करेगा, युद्ध करेगा, और सहज भाव से विजय का अनुभव हो जाएगा। तो हम सब भी माया के इस युद्ध में सहज भाव से विजयी बने, इस संकल्प से कि सर्वशक्तिवान हमारे साथ है, इसलिए जीत तो हमारी ही होगी। युद्ध में भयंकरता हो जाती है। वहां भी दिखा है महाभारत के युद्ध में अनेक बार पांडवों को ऐसा लगा कि हमारी जीत नहीं हो सकती। भीष्म के साथ युद्ध करते हुए रोज इतना संहार होने लगा, पहले ही दिन इतना संहार हुआ, पांडवों को लगा कि जीत हमारी नहीं हो सकेगी, निराश हो गए। लेकिन श्री कृष्ण दिखाया वहां बार बार उनको प्रोत्साहित करता है कि कल ये करना, कल की प्लानिंग करो, आज की भूल जाओ। तो हम सब अपनी जीत के बारे में ऐसा निश्चय धारण करें। ऐसे ही और बड़ी चीजें हैं हमारी स्मृतियों के लिए कि हमारा संपूर्ण स्वरूप क्या है। जो बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं ये बात उनके लिए है। हमारे संपूर्ण स्वरूप की स्मृति बाबा ने हमें दिलाई है, उसका एक चित्र हम अपने सामने बनाएं। बाबा ने एक अव्यक्त मुरली में कभी बहुत पहले कहा कि एक ऐसा चित्र अपना बनाओ, एक ऐसा विजन तैयार करो कि मैं अपनी संपूर्ण अवस्था में एक ऊंची स्टेज पर विराजमान हूं और मेरे चारों ओर अनेक लोग हैं, अनेक आत्माएं हैं, और मैं उन्हें दृष्टि देकर उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर रहा हूं। बहुत सुंदर दृश्य है ये। बाबा ने हमें ये भी स्मृति दिलाई कि ये विजयमाला तुम्हारी ही यादगार है। हम जितना जितना इस नशे में रहेंगे कि मैं विजयी रतन हूं, तो क्या होगा, क्या होता जाएगा, हमारी विजय होती जाएगी। और जब हमें ये स्मृति आती जाएगी कि मैं विजयी हूं, क्योंकि रोज रोज की विजय हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाएगी, हमारी विजय के नशे को बढ़ाएगी, और जैसे जैसे विजय का नशा और बढ़ेगा तो क्या होगा, नहीं और कुछ होगा। देखो किसको याद आता है, क्या होगा, और विजय माला में हमारा कौन सा नंबर है, ये भी स्मृति आने लगेगी। फिक्स तो है ही ना, लेकिन हमें फिक्स करना है, हम ऐसा समझें। तो हमें ये भी स्मृति आने लगेगी कि विजय माला में हमारा कौन सा नंबर है। जिनको ये नशा रहेगा, ये स्मृति रहेगी कि मैं हीरो एक्टर हूं, उनको क्या होगा, इसी तरह अपने भिन्न भिन्न हीरो पार्ट की स्मृति आती रहेगी, दिखने लगेगा। बाबा ने ये बात कही है कभी कि अंत से पहले हरेक को, सबका अंत तो अलग अलग समय पे होगा, हरेक को उसके संपूर्ण जन्मों का सिजरा कहते हैं, इसे क्लियर होगा, दिखाई देगा स्पष्ट, फिल्म की तरह। तो कुछ आत्माएं तो ऐसी होंगी जिनको केवल अंत में उनके सभी जन्म मालूम होंगे, और कुछ आत्माएं ऐसी होंगी जिनको बहुत पहले से उनके जन्मों का मालूम होगा। हम जरा विचार करें ब्रह्मा बाबा के बारे में, उसे पहले ही दिन स्मृति दिला दी गई थी कि तुम पहला नंबर आत्मा विष्णु श्री कृष्ण, हर जन्माष्टमी पे क्या रहता होगा बाबा को, कल्पना करें हम, कैसी सुंदर स्मृति, कैसा सुखद नशा। तभी तो दादी ने उस दिन सुना ना, बाबा डांस करने लगते थे कि ये बूढ़ा शरीर छोड़कर ये मिचनू छोटा सा श्री कृष्ण बनूंगा जाकर, जब जब जन्माष्टमी आती होगी तो आप सोच सकते हैं कि बाबा को शायद नींद भी ना आती हो, वही दिखता होगा, ये मेरा स्वरूप जिसको सारा संसार भगवान मानकर पूज रहा है, जिसको सारा संसार प्यार कर रहा है, वो मैं। तो इस तरह स्मृति हमें आनंदित स्थिति में ले जाती है। जिसको लंबे समय से स्मृति आ जाएगी, वो जीवन का लंबा समय 5 साल 8 साल 10 साल इस सुखद नशे में व्यतीत करेंगे। इस नशे का 1 साल भी बहुत लंबा है, एक एक दिन लंबा है, लंबा माना सुखों के लिए लंबा। एक एक दिन जब आत्मा को नशा चढ़ेगा मैं ये हूं, तो वो नशा आत्मा को इतना आनंदित करेगा कि सारा दिन उसके लिए निरंतर अतीन्द्रिय सुखों में बीतने वाला हो जाएगा। हम ब्रह्मा बाबा की उन बातों को और याद कर लें और ममा की, क्योंकि दोनों को ही उनके स्वरूप की याद आ गई और हम अपने विवेक से ये भी समझ सकते हैं कि ममा और बाबा को अपने 84 जन्मों की भी स्मृति आ गई होगी, है जो उन्होंने कहीं बताया नहीं, है निश्चित है ना। ब्रह्मा बाबा को सब कुछ दिखता होगा, ये हीरो पार्ट मेरे रहे हैं इस ड्रामा में। तो कितना आनंदित रहे होंगे वो अपने 33 वर्ष की साधनाओं में, न केवल योग कर रहे होंगे ऊपर, लेकिन इस स्वरूप में आनंदित। और जैसे ही पहले दिन उन्हें पता लगा कि तू प्रजापिता ब्रह्मा है, ये भी तो एक बड़ी चीज थी ना, जो केवल उनके लिए है। देवी देवताओं की बात तो श्री कृष्ण के साथ और भी बहुत हैं हम सब, पर ब्रह्मा तो केवल एक, एक शिव बाबा तो एक ही ब्रह्मा। जब उसे ये पता चला होगा कि तू प्रजापिता ब्रह्मा है, तो क्या क्या हो गया होगा, दृष्टि बदल गई क्षण भर में, सभी बच्चे हैं तो प्योरिटी संपूर्ण, क्षण भर लगा प्योरिटी को संपूर्ण होने में, सब बच्चे हैं मेरे, तो भावनाएं पितृवत हो गई, पितृवत पालना की, बहुत प्यार की, सब बच्चे हैं। तो यही वो सेकंड होता है जो मनुष्य के जीवन को बदल देता है, जिस सेकंड का बहुत महत्व है हर व्यक्ति के जीवन में, इस एक सेकंड का ही महत्व है, इस एक क्षण का, जब उसको इस तरह की विशेष स्मृति आ जाए, वही क्षण उनके जीवन को बदलने वाला हो गया था। इसलिए उनको अपने जीवन में कोई विशेष पुरुषार्थ की खेचातान नहीं करनी पड़ी। हम में से भी जिनको अपने जीवन में एक क्षण में स्मृति आ जाती है, वो महान बन जाते हैं। आप बाबा की 78 की कुछ मुरलियां उठाकर देखें, अभी आएंगी वो, रिपीट हो रही हैं, 77 की चल रही हैं, जिसमें बाबा ने 3 मुरली चलाई थी, राशि, दशा और काल, 3 चीजें होती है ना ज्योतिष में, राशि, दशा और काल। तो बाबा ने बहुत ही अच्छे रहस्य स्पष्ट किए थे कि जब कोई आत्मा ज्ञान लेने आती है, बहुत सुंदर बात है ये, और आप सबके अनेक प्रश्नों का उत्तर भी है कि जब कोई आत्मा ज्ञान लेने आती है तो उसको नशा पहले ही क्षण चढ़ गया, 7 दिन में चढ़ा या सालों लग गया। दूसरी बात, उसको निश्चय आते ही हो गया, 7 दिन के बाद हुआ या बहुत समय के बाद हुआ। उसका योग पहले ही क्षण लग गया, 7 दिन के बाद लगा या बहुत दिन के बाद लगा, इस बात पर डिपेंड करता है उसका भाग्य। जो इस सृष्टि की सबसे महान आत्माएं हैं, उनको आते ही सब कुछ हो गया, आते ही स्मृति आ गई कि बस आ गए, जहां आना था पहुंच गए वहीं। ये पवित्रता ही जीवन है। दूसरी चीज, समय के लिए, काल के लिए बाबा ने बहुत अच्छी बताई थी कि मान लो कोई आत्मा 50 साल से ज्ञान में है, लेकिन उसका श्रेष्ठ पुरुषार्थ केवल 5 साल से है, तो उसका काल 5 साल माना जाता है। और कोई आत्मा 10 साल से ज्ञान में है और वो 10 साल से ही श्रेष्ठ पुरुषार्थ में है, तो उसका ज्ञान का काल 10 साल माना जाता है। इसलिए कौन 60 साल से है, कौन कितने साल से है, इसका निर्धारण इस समय से नहीं, श्रेष्ठ पुरुषार्थ के द्वारा किया जाता है। जितना समय, जितने साल श्रेष्ठ पुरुषार्थ में बीते हैं, वही ज्ञान काल है, उसी के आधार पर प्रारब्ध प्राप्त होती है। तो हम सबको बाबा ने भिन्न भिन्न तरह की स्मृतियां दिलाई हैं। अब समय आ गया है हम स्वयं को स्मृति स्वरूप करते चलें। योग की खेचातान हमें समाप्त करनी है, क्योंकि फाइनली हम कोई योग का अभ्यास नहीं करते रहेंगे, लेकिन स्मृति स्वरूप होकर इस संसार में सेवा का विशाल कार्य करेंगे। तो मैं अंत में कहूं कि सारा संसार प्यासी नजरों से हमारी ओर देख रहा है। उस दिन भी हमने कहा कि समय हमारा इंतजार कर रहा है। अगर संसार के लोग सुने कि कौन ऐसी महान आत्माएं हैं इस संसार की, समय जिनका इंतजार करता हो। कहावत तो यह है कि समय तो किसी के लिए नहीं रुकता, समय के लिए मनुष्य को रुकना पड़ता है। लेकिन कौन है वो संसार में ऐसे चुने हुए रतन जिनके लिए समय रुक गया है, समय को जिन्होंने बांध लिया है, रोक लिया है। तो आत्माएं भी प्यासी नजरों से हमारी ओर देख रही हैं और बाबा भी हमारा इंतजार कर रहे हैं, वतन में हमारा आह्वान कर रहे हैं। इन सब बातों को देखते हुए हमें अपने चिंतन को स्मृति स्वरूप की ओर मोड़ देना है। स्वमान के द्वारा अपने संस्कारों में रॉयल्टी भर लेनी है और इस तरह हमें स्वमान में और स्मृतियों में मगन रहना है कि हमें ऐसा लगने लगे कि मानो हम इस संसार में नहीं रहते। हमें ऐसा आभास होने लगे कि संसार के वातावरण से, यहां के वाइब्रेशन से हम बिल्कुल निर्लिप्त हैं। जो भी हमें देखे उन्हें ऐसा लगे कि ये अलौकिक व्यक्ति हैं, ये संसार के लोग नहीं, और आगे चलकर तो लोगों के मुख पर आने वाला है कि ये सब तो फरिश्ते हैं, ये मनुष्य नहीं, ये सब तो फरिश्ते हैं। बल्कि ऐसा भी हो जाए कि जहां हम जाएं हमारा ऐसा स्वमान हो कि जहां हम जाएं हमारे जाते ही वहां का माहौल बदल जाए, वहां के वाइब्रेशन श्रेष्ठ हो जाएं। और हमें ये याद रखना चाहिए कि जब हम स्वमान में स्थित रहेंगे तो सारे संसार की अनेक आत्माओं का सहयोग भी हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। अगर हम में से कोई ये शिकायत करता है कि हमें दूसरों का सहयोग नहीं मिल रहा, तो उन्हें अपने को ठीक करना चाहिए, अपने को करेक्ट करना चाहिए कि स्वमान में स्थित हो जाएं। स्वमान की कमी से सहयोग नहीं मिल रहा है, स्वमान में स्थित हो जाएं तो आत्माएं हमें स्वमान देने में अपना गौरव महसूस करने लगेंगी। एक बात और धारणा की मैं आप सबके सामने रख दूं क्लास की समाप्ति होते होते, कि श्रेष्ठ पुरुषार्थ की रफ्तार में वही व्यक्ति आगे चलता है जो अपनी सूक्ष्म से सूक्ष्म कमियों को जानता हो, या जो व्यक्ति अपनी भूलों को स्वीकार कर लेता हो। भूलों को स्वीकार करना निर्मल चित्त की पहचान है, भूलों को स्वीकार न करना अहम का प्रतीक है। तो हम सभी अपने अहम को छोड़ते चलें, अपने भूलों को सच्चे दिल से स्वीकार करके उनको बदलते चलें। और हमें यह भी ध्यान रखना है कि समय अनुसार हमें अपनी बुद्धि को स्वच्छ करना है। अपनी बुद्धि में जो भी गंदगी आ गई हो उसको निकालते रहना है, और कोई नई गंदगी हमें भरनी नहीं है। गंदगी मनुष्य कैसे भर लेता अपनी बुद्धि में, उसका एक ही स्वरूप है, अवगुणी दृष्टि। अवगुणी दृष्टि को फॉलो करता है पर चिंतन। जहां अवगुणी दृष्टि है वहीं पर चिंतन है, और जब हम अपनी दृष्टि से दूसरों के अवगुण देखते हैं तो हमें एक गहरी बात याद रखनी चाहिए, अवगुण देखना माना दूसरों के अवगुण स्वयं में ग्रहण करना। इसलिए एक बहुत बड़ी गलती करता है वो मनुष्य जो दूसरों के अवगुण देख रहा है, क्योंकि जो कुछ हम देखते हैं आत्मा सेंसिटिव होने के कारण, प्योर होने के कारण उसको ग्रहण कर लेती है। तो इस प्रकार समय से पहले हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से चलें, ऐसा ना हो समय आगे निकल जाए, हमारी मंजिल दूर रह जाए और तब हम सोचते ही रहें, इतनी दूर मंजिल चली जाए कि हम सोच भी न सकें, हमें ये मानना पड़े कि अब उस मंजिल पर पहुंचना नितांत असंभव है। तो बाबा हमारे साथ है, हम ये स्लोगन याद रख लें, एक कदम हम बढ़ाएंगे 100 कदम बाबा की ओर से बढ़ेंगे, हमें मदद मिलेगी और हम अपनी मंजिल के समीप पहुंच जाएंगे। ओम शांति।